ओम शांति। आज का विषय है गॉड्स टचिंग वर्सेस माया टचिंग, भगवान की टचिंग बनाम माया की टचिंग। कुछ दिन पहले मुरली में था कि बाबा को कोई आश नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भूख नहीं है, खाता नहीं पीता नहीं हूं, लेकिन वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ये है वंडरफुल। तो किसी न किसी माध्यम से हर बच्चे की बाबा इच्छा पूर्ण करता है। कोई ना कोई सोर्स होता है कि हम उसकी टचिंग को ग्रहण किस तरीके से करते हैं, और अगर वो टचिंग हमें नहीं हो रही है तो उसके क्या कारण है, और टचिंग आ रही है तो क्या यथार्थ उसकी ही टचिंग है या फिर माया की टचिंग है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम देखेंगे। ये एक मुरली है 14 मार्च 82 की, उसमें एक प्रश्न है। विदेशियों ने पूछा बाबा से कि बाबा की टच योग में जब हम बैठते हैं तो वो बाबा की ही टचिंग है, ये कैसे पता चले। तो उसमें बाबा ने तीन बातें बताई हैं। अगर बाबा की टचिंग है तो पहली बात है कि वो बहुत पावरफुल होगी, अपनी शक्ति से विशेष शक्ति अनुभव होगी कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ऊपर वाले की शक्ति है। वो स्पष्ट होगी, क्लियर नहीं होगी, माने दूसरी बात है स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, उसमें किसी प्रकार का असमंजस नहीं होगा, अंतर्द्वंद नहीं होगा। और तीसरी बात, जो टचिंग होगी उसके आधार पर सफलता होगी, उसमें असफलता नहीं होगी। तो समझ लो कि बाबा की टचिंग है, ये बाद में पता चलेगा। हाँ, लेकिन उस समय कैसे पता चले, तो उस समय पहली दो बातें हैं कि किसी प्रकार का असमंजस नहीं रहेगा, अंतर्द्वंद नहीं रहेगा, वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगी कि उसकी ही टचिंग है। उसके ऊपर हमारा दूसरा विचार नहीं चलेगा कि पता नहीं है या नहीं है। और वो बहुत पावरफुल होगी, विशेष शक्ति होगी, उस दिन अनुभव होगी कि ये विशेष शक्ति है, जो शक्ति हमने पहले अनुभव नहीं की, इसलिए वो पावरफुल भी होगी, स्पष्ट भी होगी। तो तीसरा उसका परिणाम बहुत ज्यादा सफल होगा। तो तीसरा सफलता नहीं हुई, हाँ, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। तो वास्तव में कई बार ऐसे होता भी है, जैसे काली बाबा ने कहा था कि तुम प्रदर्शनी समझाते हो लेकिन कोटों में कोई ही निकलेगा, ये तो होगा ही। ऐसा भी होता है कि प्रदर्शनी तो समझा दी है लेकिन कोई कुछ सालों के बाद आता है, ऐसा नहीं कि उसमें आ जाए। तो सफलता में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको क्लियर करने के बाद ही हमको सफलता पर पहुंचना है। तो जरूरी नहीं है कि सफलता हमको उसी समय मिल जाए, तो उस समय भी हमको डिसहार्टेड नहीं हो जाना है, क्योंकि थी तो बाबा की टचिंग और सफलता है नहीं है, तो उसमें हम सोच सकते हैं माया की टचिंग हुई, लेकिन वो वास्तव में माया की टचिंग नहीं, बाबा की। तो उसमें इसलिए कहा जाता है बेट एंड वॉच, वॉच एंड बेट, प्रतीक्षा करो थोड़ी। तो वो सफलता बाबा की हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये तीन बातें थी। ये पहली बात थी कि वो बहुत शक्तिशाली अनुभूति होगी, पावरफुल अनुभूति होगी, और दूसरा क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, अंतर्द्वंद नहीं होगा, और तीसरी उसकी परिणाम है सफलता। तो ये तो बाबा के प्रश्न के उत्तर के अनुसार थी तीन बातें। लेकिन अभी हम और देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में बाबा की टचिंग है तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या परिवर्तन होगा, और उस तरीके से हमारी पुरुषार्थ की कैसे रफ्तार बढ़ेगी, या पुरुषार्थ कहाँ कहाँ रुकता है, उसके क्या क्या कारण है। तो बाबा की जो टचिंग है तो उसके आधार पर हमारे पुरुषार्थ की स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, स्लो नहीं होगी। अगर कोई विघ्न भी आते हैं तो विघ्न को पार करने का अंदर सामर्थ्य पैदा होगा, वो ताकत शक्ति पैदा होगी, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आते रहेंगे, कई तरीके से विघ्न आ सकते हैं, स्वयं के मन के भी आ सकते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के विचार आत्मा केंद्र भरे हुए हैं, तो किसी तरीके से आ सकते हैं। अपना मन ही कहेगा कि आज तो बहुत ठंडी है, जैसे आज कितना ठंडी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन मन जो है ना उसको अंदर से अगर बाबा की ताकत है, अंदर में शक्ति भरी है, तो स्वीकार नहीं करेगा उसको। ठंड तो लगेगी, ऐसा कि नहीं लगेगी, वो तो लगेगी लगेगी, लेकिन उसके लिए हम उसका कुछ समाधान ढूंढेगा, समाधान ढूंढेंगे उसका, उसके लिए उससे बचाव के लिए कुछ ना कुछ हम युक्तियां करेंगे, लेकिन अपने पुरुषार्थ को नहीं हम छोड़ेंगे, उसके अधीन नहीं हो जाएंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों के अधीन होंगे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो विचार ऐसे पैदा होंगे, आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य बाबा ने भरा है, वो समय पर काम करेगा, तो हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो दूसरी बात है, फिर सदा संतुष्ट रहेगी मन में। आर्मी वाले तो हाँ कल वो तो फिर भी ठीक है, कल हम नक्की लेख हाँ वो तो खैर खुशी की किसी की प्रकृति भी ऐसी होती है जिसको ठंड इतनी लगती भी नहीं है, कोई कोई तो सिंगल कमीज में अभी भी घूमते हैं जो मधुबन में आए हैं, कई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं। ठंडे पानी से नहाता है, एक वीडियो क्लिप आया था जो हिमालय पर एक सन्यासी वो वहां बर्फ जमी है, वो बर्फ तोड़ के अंदर से पानी निकाल के नहा रहा है। हाँ कई कई होता है, कईयों को सर्दियों में भी फैन चाहिए, वो भी होता है, उसके बिना सफोकेशन हो जाती है। तो ये प्रकृति के होता है वास्तव में, लेकिन वास्तव में हमारे मन पर ही आधारित है ये सारी बातें। होता है कल परसों हम नकेले वॉकिंग कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव में घूम रहे, कितनी सर्दी है, तो उनका पिता भी है वो भी नंगे पांव में घूम रहा, कुछ ने चप्पल पहनी थी कुछ ने नहीं पहनी, तो वो भी तो है उनको, क्योंकि उनके मन में ठंड का कोई ऐसे प्रश्न ही नहीं है, वो तो मौज जिंदगी की मौज कर रहे हैं वो। तो ये वास्तव में हमारे सारे मन की ऊपर आधारित होता है कि हमारे मन में किस तरीके से विचार भरे हुए हैं, उसी के आधार पर हमारी जो है ये पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ती है। तो दूसरी बात है कि हाँ जी हाँ ये विचार वास्तव में नहीं, डॉक्टर ने दिए खुद हमारे मन में ही ये विचार तो हैं, है ना, और कुछ वातावरण ने दिया, कुछ परिवार की तरफ से मिले, लौकिक की तरफ से, कुछ अलौकिक की तरफ से, लेकिन जब हम इस अलौकिक जीवन में कदम रखते हैं तो हमारी विचारधारा में टोटल परिवर्तन हो जाता है। अगर टोटल परिवर्तन हो रहा है वो विचार जितने हमारे मन बुद्धि में बैठ रहे हैं, तो ये प्रकृति भी उसी तरह से काम करेगी, उसी तरह से हमारी एक्टिविटी होगी, उस तरह से हमारे विचार भी चलेंगे, हमारे कर्म भी वैसे होंगे, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। तो मुख्य रूप से कि हमारे विचार जितने शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, ताकतवर है, तो हमारा पुरुषार्थ की स्पीड भी उसी तरीके बढ़ती जाएगी, और जितना हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा तो उसका परिणाम हमारे जीवन में संतुष्टता का भाव रहेगा, तृप्त आत्मा, जैसे काली बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, तो तृप्त हुई माना सब चीजों से निकल गए हम बाहर, जो माया की जितने भी चालें थी उनसे हम निकल गए। तो ये दूसरी बात है कि जीवन में संतुष्टता का भाव रहेगा अगर माया की टचिंग नहीं है, बाबा की टचिंग है तो माया से सेफ रहेंगे। अगर संतुष्टता नहीं है, असंतुष्टता का भाव रह रहा है, हाँ पुरुषार्थ के प्रति तो संतुष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितना हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारा संतुष्टता का थोड़ा भाई ठीक है, जितना समय किया इसका परिणाम हमको सार्थक रूप से मिल रहा है, तो एक संतुष्टता का भाव रहेगा। तो लेकिन पुरुषार्थ के प्रति संतुष्टता नहीं कि हमारा बस इतना है, हमारी स्टेज तो ये अंतिम स्टेज अब हो गया इतना ही, वो तो हमको दिन प्रतिदिन नई नई स्टेज की उपलब्धियां हासिल करनी है, तो संतुष्टता का भाव रहेगा। तीसरी बात है, अगर बाबा की टचिंग है और हमारे जीवन में उसका जो प्रभाव है, तो हम किसी के पार्ट को देख के प्रभावित नहीं होंगे, अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि बाबा ने हर तरीके से हमको नॉलेज दे दी है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारे जीवन में हम स्वयं को चेक कर सकते हैं कि बाबा की अगर टचिंग है तो किसी प्रकार का असमंजस नहीं रहेगा, और बाबा की टचिंग नहीं है तो उससे अगर माया की टचिंग है तो उसको हम फिर दूसरों से वेरीफाई कराएंगे, बाबा की टचिंग है तो वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आज हम देखते हैं कुछ दिन पहले एक स्टेट में बताया ना बाबा आए हुए हैं कहीं, लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अगर उनको अपने ऊपर विश्वास होता है तो उनको वीडियो बना के ये पूछने की जरूरत नहीं देगी आप क्लैरिफाई कराओ इसके लिए, वो स्वयं की सोच की बात है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में तो असंतुष्टता के बीज है ना, वो माना असंतुष्ट है उस चीज से, द्वंद है, विश्वास नहीं है, ये भगवान है। हाँ जब हमने भक्ति छोड़ी है और ज्ञान हासिल किया तो हमने क्लैरिफाई थोड़ा किया भक्ति वालों से कि हम झूठ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं क्या, हमने तो सबको दरकिनार कर दिया एकदम, माना स्वयं के अंदर बाबा ने हमको सबके अंदर इतनी ताकत भर दी, शक्ति भर दी कि हमने संसार से भी पंगा ले लिया, घर वालों से भी कितना विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि बाबा की शक्ति इतनी अंदर आत्मा की भर गई कि कोई भी सामना उसका विरोध करने के लिए आत्मा में ताकत भर गई, वो तो विचारों में हमारा कोई असमंजस का भाव नहीं रहा, स्पष्टता रही, क्लियर रही, और वो शक्तिशाली विचार थे, और दोनों स्पष्ट भी थे शक्तिशाली भी थे, उसका परिणाम क्या हुआ, जीवन में सफलता। और ऐसा नहीं कि बिघन नहीं आए, बिघन तो बाद में भी चालू ही चल ही रहे, लेकिन वो बिघन भी हमको क्या लगते हैं, खेल खेल लगते हैं, क्योंकि अंदर में शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गया, हमको पता है कि हमारा लक्ष्य क्लियर है, स्पष्ट है, और वो शक्ति है और सक्सेस हमारी है, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जीवन में परिस्थिति तो आ रही है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और उसका परिणाम कि जो भी हमारे लौकिक या अलौकिक जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं वो धीरे धीरे खींचे चले आ रहे हैं। तो ये बाबा की टचिंग है ना, अगर माया की टचिंग होती तो हम उनकी तरफ जाते, हमारा उनसे अटैचमेंट ज्यादा होती। अगर अभी भी हमारा उनसे ज्यादा अटैचमेंट है तो समझने की जरूरत है कि माया की टचिंग अभी भी हमें हो रही है, बाबा की टचिंग यथार्थ रूप से काम नहीं कर रही है। और टचिंग उसकी तब होगी जब हमारे मन के ऊपर जो अनेक प्रकार के विकारों की चादर को हो या विचारों की छाया पड़ी है, जब हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो उसकी टचिंग नहीं होगी। जैसे बरसात तो हो रही है लेकिन ऊपर अगर कोई बर्तन रख दिया जाए और वो बर्तन उल्टा है, या कोई चादर रख दी जाए और नीचे धरती गीली थोड़ी नहीं होगी। तो मन की धरती के ऊपर भी हमने अनेक प्रकार के विकारों की अगर चादर बिछा के रखी है, या कोई परछाया है, या व्यर्थ के विचार हैं, या कोई अटैचमेंट है, तो वो टचिंग कैसे होगी। और ये टचिंग वास्तव में हम सबको डेली होती है, चार पेज की मुरली भगवान की टचिंग तो है, और उसकी टचिंग हमको तब होगी जब हम उसके जैसा बनेंगे। तो हमारी दोस्ती अच्छी किससे होती है, उसके जैसा बनेंगे तो, उसकी बात मानेंगे, उसके बारे में जानेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे बातचीत करेंगे, उसको देखते रहेंगे, जैसे आशिक माशूक होते हैं तो कैसे एक दूसरे की याद आती रहती है उनको, इतनी गहरी प्रगाढ़ याद हो जाती है कि जो वो सोचती है सोचता है एक दूसरे को टच होता रहता है। हाँ जी, उनको तो 8 घंटे, उनको तो 24 घंटे याद रहती है, मना अपन वो भी है गया अच्छा वो अनुभव यहां काम आ रहा है तो वो टचिंग उनकी आपस में रहती है, कैसे नहीं भूलते एक दो की याद, और विचार कैसे मिलते जाते हैं, है ना। तो बाबा की टचिंग ये मुरली ही टचिंग है वास्तव में, जितना बाबा के विचार और हमारे विचार में दोनों में समानता हो जाएगी तो उसकी टचिंग क्लियर अनुभव होने लगेगी। अगर जितनी हमारी दूरी है तो वो टचिंग में भी दूरी होती रहेगी, इसलिए अंतर्द्वंद मन में रहेगा, ये करें या नहीं करें, ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बाबा की टचिंग है तो फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गुण स्वतः आते जाएंगे और उससे स्वतः सेवा होती जाएगी। ट्रस्ट माना अर्थात ट्रस्टी का भाव रहेगा हमारे मन में, क्योंकि जो उसके गुण है, जो उसके कर्तव्य, वो हमारे में स्वतः आते जाएंगे, उसकी टचिंग है, उसके साथ स्पर्श कर रहे हैं। तो ये योग में हम बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर सकते हैं कि बाबा को केवल परम धाम में देखते रहना, है ना, एक गीत है ना, आप बैठ मेरे पास मैं तुझे देखता रहूं बाबा, तो खाली देखते रहना उसको, सिर्फ बोलने का नहीं कुछ भी, खाली देखते रहना मन की आंखों से, मैं आत्मा देख रही हूं, बाबा को देख रही हूं। जैसे देखा हो मेडिटेशन में ट्रांसलाइट का जो शिव बाबा का कास्कट है, कैसा है वो बड़ा कास्कट जो लगा हुआ है, उसमें डबल कास्कट है, एक बीच में कास्कट है और दूसरा किरण है ऊपर में, तो ऊपर में बड़ा बाबा और बीच में समझ लो मैं आत्मा हूं, वो डबल है, वो बड़ा बाबा आया हुआ है आज की मुरली में है कि बड़ा बाबा आया हुआ। तो वो कितना अच्छा योग का एक्सपीरियंस है कि सब तरफ से बाबा की किरणें हैं और बीच में मैं आत्मा हूं, बीच में मैं बिंदु हूं, तो खाली उसको देखते रहना परम धाम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, फिर उसके बाद बातचीत करने की, एक है पहले खाली देखते रहना, देखते रहना, अगर कितनी देर रहेंगे फिर तो बोलेंगे ना, सामने वाला भी कुछ बोलेगा, हम भी बोलेंगे। तीसरी बात है फिर उसको स्पर्श, फिर उसको स्पर्श करने का, जब हम उसको छेड़ेंगे ना तो बोलेगा, छेड़ेंगे तो बोलेगा कैसे, तो कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ना, तो उसको स्पर्श करने का है ना, जैसे लाइट को भी जैसे बाबा आ रहा है और ऊपर से मुझे टच कर रहा है एकदम, या यहां चिपक गया हुआ है, तो बार बार उसको टच करना, देखते रहना, स्पर्श करते रहना, फिर उसके बाद रूरुवान करने उसे, तो उसकी टचिंग धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि उसके जैसा बनने के लिए उसकी बात को मानना पड़ेगा ना। तो मुरली में इतने प्रकार की जो युक्तियां आती हैं, कोई युक्ति से हमको उसके जैसा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, तो फिर उसके बाद फिर हमारे जीवन में उमंग उत्साह कायम रहेगा, कुछ ना कुछ नवीनता हम क्रिएट करते रहेंगे। अगर क्रिएटिविटी नहीं है, जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, तो फिर नीरस नीरस लेगा, सूखा सूखा रहेगा। इसलिए कुछ ना कुछ तो नवीनता चाहिए। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा चित्रों के आगे बैठ जाओ, रात को नींद सोते लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। फिर ओहो हाँ, हम इन जैसा बन रहे हैं बाबा, आप हमको इन जैसे बनाने के लिए आए हो, हम ये पहले ये थे अब क्या बन गए, आज की मूल्य में था ना, पहले तुम आज की मूल्य में है, पहले तुम पवित्र थे सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। जैसे उस दिन बताया ना कि सीढ़ी से बाहर, तो हमने चित्र वो देखा, वास्तव में सीढ़ी में ब्राह्मण नहीं है, है ही नहीं उसमें ब्राह्मण, वो सीढ़ी से बाहर ही बैठे हुए हैं। वो चक्कर जो है चक्कर में भी ब्राह्मण नहीं है, वो चक्कर के ऊपर जो आप देखेंगे तो जो टॉप पॉइंट है संगम का उसके ऊपर ही मम्मा बाबा बाहर ही बैठे हुए हैं, चक्कर के अंदर नहीं है कोई भी, वो जाना नहीं है चक्कर में। चक्कर में जाते जाते तो हमारा ये चक्कर भी माया ने रच दिया, उसमें हम फंस गए, तो चक्कर से बाहर है। तो ये जो है कोई भी चीज है, हमको अगर उसको देखते हैं तो उसको नए नए तरीके से हमको देखना है कि कैसे हमारा मन बुद्धि इसमें अच्छी तरह इन्वॉल्व रहे, उसमें रम जाए, कुछ रमणीकता हो, पुरुषार्थ में रस बैठे, तो दिन प्रतिदिन जो माया की टचिंग है ना उससे हम डिटैच होते जाएंगे। और माया की टचिंग कौन सी है, माया अर्थात माया की टचिंग, माया भी टचिंग में ना माना मर्यादाओं से हमारा कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है, वो माया की टचिंग है, अटैचमेंट है, लगाव है हमारा कहीं ना कहीं बाहर की चीजों से, जिससे हम बाबा से दूर होते जा रहे हैं, पुरुषार्थ में रस नहीं बैठ रहा है ना, उमंग उत्साह नहीं कायम हो रहा है। तो इस तरीके से हमको स्वयं की खुद ही जांच करनी है, कमरे में योग करना है, या ये साधन नहीं है बाबा ने टच कराया। जैसे अभी मैं आज ही, जैसे आज क्या कल भी मेडिटेशन में जब अमृत मिले गए तो पूरा इतना गर्म लग रहा था, बात मत पूछो, मैं बोला बाहर जाऊं उठ के, लेकिन फिर हम वहीं बैठे रहे धीरे धीरे, तो दो मिनट के बाद बंद कर दिया किसने वो, लेकिन हम वहां से उठे नहीं। तो अनेक प्रकार की परिस्थिति तो आएंगी, हम सोचते हैं कि ये माहौल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सोचने के अनुकूल ही हो जाता है, वो प्रतिकूल ही हो जाता है, अनुकूल नहीं होता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी अपने मन को एकदम मोल्ड कर लेगा तो, और मन ऐसे फिर उसके बाद तो शरीर से भूल गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हमारा। तो माया की अनेक प्रकार की टचिंग है, चाहे वो प्रकृति की तरफ से आ रही है, या अपने विचारों की तरफ से आ रही है, या सेवा साथियों की तरफ से आ रही है, किसी ना किसी तरीके से माया तो अपनी चाल चलेगी, क्योंकि इतने जन्म से माया ने हमारे से प्यार किया हुआ है, या हमने माया से प्यार किया हुआ है, तो उसको छोड़ना कुछ सहज काम थोड़ा नहीं है। तो बाबा की टचिंग के लिए जो मुरली है, जितने भी अच्छे अच्छे हमको क्लासेस मिलती है, उसमें हमको कुछ नवीनता ढूंढनी है, कुछ ना कुछ तो हमारी बुद्धि में वो चीज बैठती रहनी चाहिए, तो हमारे संकल्प शक्तिशाली होंगे, तो हमारी सोच में परिवर्तन होगा, तो संकल्पों की गति भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, माना कम माना शक्तिशाली संकल्प होंगे, जो यथार्थ होंगे, जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। अगर माया की टचिंग है तो उसमें स्वार्थ होगा, और बाबा की टचिंग है तो वो बेहद में होगा, वो निस्वार्थ रूप से सबके प्रति कल्याण की भावना हमारे मन में पैदा होती जाएगी। और बाबा की टचिंग है तो हमारा साक्षी भाव, संतुष्टता, सहनशीलता, ये शक्तियां बढ़ती जाएंगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकाग्र लंबे समय तक हम एकाग्र रहेंगे। अगर माया की टचिंग है तो हमारा मन इधर उधर डुलता रहेगा, इधर उधर के विचारों में व्यर्थ में भ्रमण करता रहेगा। अगर बाबा की टचिंग है तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकांत का रहने में मन करेगा कि एकांत का अनुभव करें, तो अंतर्मुखता का होगा, मन स्वतः अंतर्मुख होगा। अंतर्मुखता माना बाबा के महावाक्यों के अंदर रमण करते जाएंगे, अंतर्मुखता की गुफा। मुरलियां भी क्या है, मुरलियां भी एक गुफा के समान है, जो हमको संसार के जो बाहर की बातें उनसे छुड़ा के हमको अंदर की तरफ ले जाता है, बाबा की गोद में ले जाता है, अंडरग्राउंड कर ले जाता है। अगर हम उससे उसकी टचिंग नहीं रहते तो माया की टचिंग होती रहती है। हाँ, मिक्स टचिंग भी हो सकती है, अगर हम श्री मत के अनुसार अपनी उसको सुविधाजनक श्री मत जिसको कहा जाता है, अगर सुविधाजनक श्री मत के आधार पर हम अपने जीवन को चला रहे तो फिर मिक्स भी हो सकती है। और उसमें योगा करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें, इसमें टाइम हमारा चलता जाएगा। और बाबा की टचिंग है तो उसमें श्री मत में यथार्थ चले तो केवल बाबा की टचिंग का अनुभव होगा। तो माना एक ही संकल्प हमको पता चल जाएगा कि हमको ये करना है, और सीधी सी बात है जो ब्रह्मा बाबा ने की है वो सामने हमारे सामने बिल्कुल ही है। तो हमारे मन में ऐसे दूसरा द्वंद्व नहीं पैदा होगा कि हमको ये करना है या नहीं करना है, एक ही प्रश्न होगा, एक ही उसका उत्तर होगा कि ये यही करना है, क्योंकि सारी श्रीमत क्लियर है। तो बाबा की टचिंग के अनुसार हमारे जीवन में यथार्थ पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ती जाएगी, और माया की टचिंग है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते जाएंगे। हाँ, होंगे तो इसमें भी, क्योंकि अगर उतना आत्मा में समर्थ नहीं है, निरंतर एक स्थिति नहीं है, लेकिन मन में हमारे में कोई दिल शिकस्त के संकल्प नहीं पैदा होंगे, हम उससे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि 100% हमको सफलता मिलेगी मिलेगी, कहीं ना कहीं तो हमारे अनेक जन्मों की हिसाब किताब भी तो है ना जो हमारे सामने आएंगे, लेकिन उन हिसाब किताब को सामने रखते हुए भी हम उनसे घबराएंगे नहीं, उनसे हम कुछ सीखेंगे और आगे बढ़े जाएंगे। उनके बारे में हमारा ज्यादा ख्याल नहीं चलेगा, कहीं अगर हमारी असफलता होती है तो हम रुकेंगे नहीं वहां, उससे हम सीख के फिर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो उसी में पश्चाताप में टाइम चला जाएगा, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, वैसा एटमोसफेयर क्रिएट होता रहेगा। तो वहां रुकने का नहीं, चलते जाना चलते जाना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, अगर मिक्स भी है तो माया के पाले में ही चला जाएगा, सही बात बोली है, लेकिन उसमें क्या होगा फिर जीवन में हमारे जो मन में एक संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं होगी, और दूसरा हम वातावरण को भी खराब करने के निमित्त बन जाएंगे। तो हमको या तो उधर या तो उधर, सीधी सी बात है, वो तो भक्ति मार्ग में भी भगवान की टचिंग है और माया की टचिंग भी है, वो तो फिर भक्ति मार्ग में आज ही भावना भक्ति शायद नहीं छूटती है, खींच होती है उसकी आज की मुरली में, तो खींचती है भक्ति अपनी तरफ। तो अगर हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो माया भी खींचेगी और बेबी की दोनों तरफ, तो ना भक्ति के संस्कार हैं अभी तक, बाकी उनको भी छोड़ना नहीं, बाबा ने बोला भक्ति किसी से छुड़ानी नहीं, अपने आप छूट जाएगी इसमें आने पर, लेकिन हमें अब स्वयं को देखना है कहीं हमारे अभी भक्ति के संस्कार तो नहीं, वो मांगने के संस्कार तो नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे समान बैठो, है ना, कल या परसों के इसमें था जो ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, शक्तिशाली स्थिति में, दूसरी स्टेज में आओ नहीं तो लाइट माइट पूरे संसार को अपने आप मिलेगी। तो उस स्थिति बाबा तो हमको अपने समान की स्थिति में देखना चाहते हैं, उससे अगर हम नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं हलचल होती है, और हमारा मन पहले ये स्वीकार ही नहीं करता कि हम उसके समान बैठे, लेकिन वो तो खुद कह रहा है कि तू मेरे पास ही बैठो आगे। इसलिए बताया ना बार बार बाबा के पास ही बैठना, उसको देखते रहना, उसको स्पर्श करते रहना, टच करते रहना, रूरान करते रहना, तो स्वतः वो गुण आते जाएंगे, तो स्वतः आत्मा में ताकत आएगी, शक्ति आएगी और यथार्थ टचिंग होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, बाबा की प्योर टचिंग है। हाँ देखिए, प्योर टचिंग के लिए हमारा मन भी उतना प्योर चाहिए, और प्योर मन में ही बताया ना कि जैसा सामने वाला व्यक्ति होगा तो हमारी दोस्ती भी उसी अनुसार होती है, है ना। कोई मान लीजिए बहुत बड़ा ऑफिसर है तो उसकी बात को समझने के लिए हमारा बौद्धिक लेवल भी वैसा चाहिए। तो यहां तो पवित्रता की बात है कि वो परम पवित्र आत्मा है, तो हमारा मन भी जो है उतना प्योर होगा तो सुप्रीम सोल की जो टचिंग स्वतः होगी, और उसका परिणाम होगा कि जो प्लानिंग बनेगी वो प्लानिंग सफलता के अनुरूप ही बनेगी, है ना। काली रात को मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे देखे, एक है जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने वाले, दूसरे हैं कर्म करने वाले, और एक तीसरे हैं जो उमंग सा दिलाने वाले हैं। तो अगर बाबा की टचिंग है तो प्लानिंग एक्यूरेट बनेगी, और हमारे जो आसपास वाले होंगे हमको उसमें ना नुकर नहीं करेंगे, ये काम होगा नहीं होगा, वो उमंग सा दिलाने वाले होंगे, और तीसरा जो कर्म करने वाले वो भी समर्थ ताकतवर होंगे कि हाँ ये करना है निश्चित है। इसलिए दादी जी जो प्लानिंग करते थे तो उसमें तीनों बातें दिखाई देती थी स्पष्ट, वो सबको बुलाते थे दादी का ये विचार है, उसमें भी दादी जैसे डिटैच होकर बता रहे हैं, और सारे एकदम उसको स्वीकार कर लेते थे, और जैसे उस कर्म क्षेत्र पर उस कार्य को पूरा करने के लिए उतरते थे तो शत प्रतिशत सफलता मिलती है, क्योंकि वो प्योर टचिंग है। और मुरली क्या है, मुरली तो पवित्र विचारों की बरसात ही है ना, तो एक एक महावाक्य क्या है, प्योर है, ऊपर से अवतरित हो रहा है। तो अगर वो महावाक्य हमारी बुद्धि में ठहर रहे हैं दिन प्रतिदिन, ज्यादा से ज्यादा महावाक्य ठहरने चाहिए, तो हमारी टचिंग जो बाबा के साथ हमारा जो लिंक है यथार्थ टचिंग होती रहेगी, और जीवन निर्विघ्न रूप से आगे, ना केवल स्वयं का बल्कि औरों के जीवन को भी हम निर्विघ्न बना सकते हैं। हाँ वही बताया ना बाबा ने, जो पहले तीन बातें बताया, अगर बाबा की टचिंग है तो बताया कि बहुत ही शक्तिशाली होगी, वो अपनी शक्ति से विशेष लगेगी, दूसरा वो स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, उसमें कोई विचार नहीं चलेगा कि मेरी टचिंग है या माया की टचिंग है, जो हमने काम कर दिया वो ना कर दिया, उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाबा की ही टचिंग है, असमंजस का भाव नहीं रहेगा। और टचिंग का जैसे बताया कि हमारी कौन सी टचिंग है, तो कुछ दिन पहले जो बाबा ने कहा कि तुम्हें अब सब दुनिया भी बंधन में ज्यादा जाना नहीं है, दो तीन दिन पहले कम हल्का करना उसको, तो कुछ दिन पहले हमारे मन में एक विचार आ रहा था कहीं जाने का, वो लौकिक ही है, और एक तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि नहीं जाना बिल्कुल, तो फिर थोड़ा सा असमंजस में था, लेकिन बाबा के कमरे में बैठे थे तो वहां जैसे फुल स्टॉप लग गया, नहीं लग माना कि जाना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने किया, वो हम कैसे करें वो, और उस काम के लिए बाबा ने जिस काम के लिए हमको सिलेक्ट किया है उसके हम अनुरूप नहीं कार्य कर रहे हैं, उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में जा रहे हैं, तो वो तो श्रीमत का उल्लंघन हो गया ना। क्लियर तो मिल रहा है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने के बिना भी वो कार्य हो सकता है, और जाएंगे तो वहां हमारे लिए देखा वो कोई कल्याण का नहीं है, वो माहौल भी वैसा है कि वहां उस बात को सुनाया भी नहीं जा सकता है, वैसी बात उनको रखी भी नहीं जा सकती है कि वो बाबा का वहां ज्ञान सुने कुछ। तो अगर हम उस तरीके से बैठते हैं, बाकी परिस्थितियां बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, तो उसमें हमने देखा कि अगर हम उस कार्य में नहीं जाते हैं तो बोलने वाले बोलेंगे, तो लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या उस कार्य में जाते और ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या सुना आज तक, तो हम क्या थोड़ी बातें नहीं सुन सकते हैं। और वो बोलने वाले तो अगर जाएंगे तब भी बोलेंगे, नहीं जाएंगे तब भी बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो टचिंग बाबा की तो यथार्थ होती है, लेकिन अगर हमारा उस तरफ अटैचमेंट है दुनिया की तरफ, तो हम सोचेंगे ये गड़बड़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो कहा ना प्रवृत्ति मार्ग में तुमको रहना है, तुमको तोड़ निभाना है। तो हम अपने उस लगाव के अनुरूप साधन श्रीमत को अपने सुविधाजनक तोड़ मरोड़ के उसको काम लगा देंगे कि प्रवृत्ति मार्ग भी निभाना है, तोड़ निभाना है, लेकिन जिसकी जो जिम्मेवारी उनको जाना चाहिए। हम अगर उससे डिटैच हैं और हम निर्बंधन है, तो हम क्यों बंधनों को बांध रहे हैं? बताया ना, बंधनों को हल्का करना है, जितना हो सके बंधनों को हल्का करना है, क्योंकि कोई किसी के बिना ऐसा नहीं कोई रह जाएगा, अपनी अपनी दौड़ में सब लगे हुए हैं। हमें तो हमेशा ही टचिंग होती रहती है। टचिंग देखिए, अपनी कमियों की भी टचिंग होती है जो हमको नहीं करनी चाहिए, महसूसता की शक्ति बढ़ती जाती है, और दूसरा पुरुषार्थ के प्रति हमको क्या करना चाहिए उसके थोड़ा सजगता रहती है कि हमको कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कभी टाइम वेस्ट होता है तो भी वो भी हमको पता चलता है कि ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है, भले वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो वो भी एक वास्तव में उसी की कृपा जो कम से कम टचिंग तो होती है कि व्यर्थ जा रहा है, इतना हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ये हमारे विचार जो है इतने अमूल्य विचार, बाबा को केवल हमारी जो जरूरत है हमारे शुभ विचारों की जरूरत है, शुभ संकल्पों की जरूरत है, शुभ भावनाओं की जरूरत है, तो हमारे विचार अगर दूसरी दूसरी बातों में जा रहे हैं तो कहां ना कहां वो हमको फिर गिल्ट कॉन्शियस होती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक उसकी कृपा है, तो हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वो पश्चाताप का भावना रहता नहीं, ये भी नहीं करने का, ये भी नहीं करने का, यही करने का केवल, तो वो टचिंग छोटी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें फिर बड़ी हो जाती है दिन पर धीरे धीरे, और वो देखा फिर वो बड़ा होने के बाद अंदर में एक परिवर्तन का लगता कि हाँ हम कोई भी परिवर्तन करने की ताकत अभी है, इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जैसे बताया कुछ साल पहले, कुछ साल के बॉस जब हम नए नए इधर आए थे, तो उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, तो पहले थोड़ा शौक था लेकिन इतना शौक नहीं था, तो हमको था कि हम जो है ना योग के टाइम नहीं क्रिकेट नहीं देखेंगे, और नहीं देखते थे योग के टाइम, लेकिन योग के बाद में हम देखते क्योंकि लास्ट के 10-15 ओवर देखते थे, लेकिन फिर भी हमको है ये भी क्यों देखने का, तो हमने बाबा को कहा कि क्योंकि वो खुद इतना अट्रैक्ट होता है, खींच होती है उसकी तरफ, तो हमने फिर बाबा को जैसे बोला, और सच में उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है, अगर देखने फिर लास्ट अगले दिन पेपर एक नजर मार लो, अब जीता हारो तो हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो भी तो एक विश्व कल्याण की भावना के खिलाफ है ना, वो तो सोच रहे फलानी टीम जीते हमारी टीम तुम्हारी टीम, हार जीत वो फलाना हार जाए हम जीत जाए, ये भी तो हमारे मन में वो बेहद के भाव तो पैदा नहीं ना हो रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाबा के सामने अगर हम रखते हैं तो वो हाँ, तो नहीं वास्तव में उन चीजों से हमारा कल्याण नहीं है और एक्साइटमेंट है और ही हमारे बहुत हाँ उसी समय श्री छूट गया तो क्या होगा, और फिर वो उसी विरोधी टीम में जन्म लेना पड़ेगा तो क्या होगा, फिर उल्टा आ जाएगा गांव। तो वास्तव में अगर हम अपने मन को उसके आगे समर्पित कर देते हैं ना, तो वो टचिंग कराता है और टचिंग के आधार पर हमें परिवर्तन करने का सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, नहीं तो बिना उसकी कृपा के हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसी के आगे पूरा समर्पण होना पड़ेगा, जितने मर्जी हम एक दूसरे सलाह लेते रहे लेकिन जब तक हमने अपने मन को उसके आगे समर्पित नहीं किया और उसकी श्रीमत के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव नहीं होगा और ना ही उसकी कोई टचिंग का अनुभव होगा, पूरा मन को खाली करना पड़ेगा, और ये थोड़े समय की बात नहीं है, वो तो लंबे समय तक हमको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि माया बार 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 हमारे चक्कर तो काटती रहती है, वो देखती है, माया भी पैरा दे रही है, काली था ना सर्वशक्तिवान, हाँ विनाश का कोई ठिकाना नहीं, दिन रात तपस्या करते रहो, मौत तो सामने खड़ा गया, मौत तो सिर पर ही बैठा हुआ है, हाँ आज जहर आ गैस जहर मौत के, और तुम बच्चे जो योग्य बच्चे होंगे वो मौज में रहेंगे, वो सोचेंगे हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम जा रहे हैं ये तो। लेकिन ये लंबे समय का अभ्यास होगा तभी तो इससे हम डिटैच हो गएंगे, निकल पाएंगे ना। अगर इसी से हमारी अटैचमेंट है तो निकलेंगे कैसे इस चीज से? तो लंबे और बिना उसकी कृपा से निकलने वाले नहीं है, वो ही हमको खींच के निकालेगा इस चीज से, उससे चिपके रहेगा और वो हमसे चिपके रहे। तो वो ही बताया ना कि बार उसको स्पर्श करना है। तो कुछ नई नई युक्तियां रचनी है। बाबा ने उस दिन कहा ना जो योग्य बच्चे होंगे उनको नई नई युक्तियां टचिंग होती रहेंगी। कौन सी मुरली में था या कहीं और पढ़ा होगा हमने? हाँ नहीं, वो 18 जनवरी की मुरली में है, किसी ना किसी 18 जनवरी की, जो 18 जनवरी की मुरलियां पढ़ी ना, हाँ उस सीरीज में है कहीं ना कहीं, कि जो योगी बच्चे होंगे उनको योग की नई नई युक्तियां टचिंग होती रहेंगी। ओम शांति।
हर पल ही तुझको देखूं,